ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। आज श्री वामन देव के आविर्भाव तिथि है, तो श्रीमद् भागवत के आठम स्कंध में पंद्रह अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक आठ अध्याय में विशेष रूप में वामन देव के चरित्र की, इनके आविर्भाव तथा इनकी लीलाओं की वर्णन की गई है। तो आज इस परिप्रेक्ष्य में इस आठम स्कंध की 18 अध्याय के 12 नंबर श्लोक जो कि ब्लैकबोर्ड में लिखा गया है, इसे पढ़ेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ, उसकी बात चर्चा करेंगे। यत्तद् विभूर्भाति विभूषणायुधै अव्यक्तचित् व्यक्तं अधारयत् हरि। बभूवत नैव स वामनवटु सम्पश्यतोर्दिव्य गतिर्यथा नटः। यत्तत् वपुर्भाति विभूषणायुधै अव्यक्तचिद् व्यक्तम् अधारयत् हरि। बभूवत नैव स वामनवटु सम्पश्यतोर्दिव्य गतिर्यथा नटः। यत्तद् वपुर्भाति विभूषणायुधै अव्यक्तचिद् व्यक्तम् अधारयत् हरि। बभूवत नैव स वामनवटु सम्पश्यतो दिव्य गतिर्यथा नटः। यत्तद् वपुर्भाति विभूषणायुधै अव्यक्तचिद् व्यक्तम् अधारयत् हरि। बभूवते नैव स वामनवटु सम्पश्यतो दिव्य गतिर्यथा नटः। अव्यक्तचिद् व्यक्तम् अधारयत् हरि। बभूवत नैव स वामनवटु सम्पश्यतो दिव्य गतिर्यथा नटः। यत्तद् वपुर्भाति विभूषणायुधै अव्यक्तचिद् व्यक्तम् अधारयत् हरि। बभूवत नैव स वामनवटु सम्पश्यतो दिव्य गतिर्यथा नटः। माताजी शब्दार्थ, यत जो, तत वही, वपुहु दिव्य शरीर, भाति दिखलाता है, विभूषण आभूषण, आयुधई तथा हथियारों समेत, अव्यक्त अप्रकट, चित व्यक्तम आध्यात्मिक रूप से प्रकट, अधारयत धारण कर लिया, हरि ही भगवान ने, बभुव तुरंत बन गया, तेन उससे, एव निश्चय ही, सह भगवान, वामन बौना, बटुहु ब्राह्मण ब्रह्मचारी, संपश्यतो हो अपने माता पिता के देखते देखते, दिव्य गति ही अलौकिक गतियों वाला, जथा जिस तरह नटह नट अभिनेता। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला शरीर भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई अभिनेता कर लेता है। तात्पर्य, यहां पर नटह शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी विभिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:33-39 में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषम। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु। यद्यपि वे नाना अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो नारायण के रूप में थे, जिसके चारों हाथों में आवश्यक आयुध चिन्ह थे, किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी बटु के रूप में बदल लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं, वह बुद्धिमान नहीं है। उसे भगवान के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। जैसे कि भगवद गीता में 4:9 में पुष्टि हुई है, जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं जो व्यति तत्वतः। भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर में सच्चिदानंद विग्रह दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। ओम अज्ञानात मिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बलि महाराज और वामन देव की कथा जो कि श्रीमद् भागवत की आठम स्कंध से ये वर्णन है, पंद्रह अध्याय से लेकर बाईस अध्याय आठ अध्याय में, इसको आधा घंटा में बोलना है तभी संक्षेप में बताएंगे। पर जीव गोस्वामी के भी आज आविर्भाव है, थोड़े बहुत उनका भी सूचना प्रदान करेंगे क्लास में। जैसे इसी आठम स्कंध के ग्यारह अध्याय में बताया गया कि जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुई समुद्र मंथन के प्रांत, तो उस युद्ध में प्रकृति में बलि महाराज की वध हो गया था, इंद्र इनको वध कर दिया था। किनको? बलि महाराज को। लेकिन उनकी गुरु शुक्राचार्य की कृपा से इन्होंने फिर पुनर्जीवित हो गए थे। शुक्राचार्य इतनी पावरफुल है, उनके पास में मृत्यु संजीवनी मंत्र तो माध्यम से उन्होंने इनको फिर जीवित करा, फिर इनको जीवित करा दिया। तभी बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में ही हमेशा उन्हीं के तत्वावधान में ही कार्य करने लगे। तभी शुक्राचार्य तथा भृगुवंशी ब्राह्मण लोक ने बलि महाराज को विश्वजीत यज्ञ करने में प्रोत्साहित किए, जिस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अजय बन जाता है, तो उसको ही युद्ध में फिर जीत नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विश्वजीत यज्ञ की संपन्न करने से भृगुवंशी ब्राह्मणों की अध्यक्षता से यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ उस यज्ञ से उत्पन्न हुआ कुछ वस्तु प्रकट हुए। यज्ञ अग्नि से एक रथ, घोड़े, एक पताका, एक धनुष, कवच तथा बाणों के दो तरकस प्रकट हुए। और बलि महाराज के जो पितामह महाप्रह्लाद महाराज ने एक सुंदर फूलों की माला पहना दिए। किनको? बलि महाराज को। जो बलि महाराज प्राप्त हो गया रथ के ऊपर बैठ गए, तो वे प्रह्लाद महाराज प्रकट होकर एक सुंदर माला पहना दिए। और उनकी गुरु शुक्राचार्य ने इनको एक शंख प्रदान किया। तभी फिर बलि महाराज पूर्ण शक्ति के साथ फिर स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिए, इंद्र की राज्य में आक्रमण किए। इंद्र के राज्य की सीमा पर, स्वर्ग की सीमा पर जाकर शंख ध्वनि किए। इंद्र आश्चर्यचकित हो गया, बोले इसी व्यक्ति को मैं मार डाला था युद्ध में, फिर ये दोबारा पकड़ हो गया। अभी तो इतनी तेजस्वी प्रतीत होता है कि उसके सामने आना, लड़ाई करने की बात तो दूसरी, उसके सामने आने के लिए मुझे भय लगता है। क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके बलि महाराज विशेष शक्तिमान बन गए थे, इसलिए इंद्र ने युद्ध करने के लिए आया नहीं, वरन अपने गुरु महाराज बृहस्पति के पास में गया सलाह लेने। तो बृहस्पति कहे कि इंद्र अभी तुम इनके साथ युद्ध नहीं कर पाओगे, वो अजय बन चुका है। कौन? बलि महाराज। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से विश्वजीत यज्ञ के संपन्न करके वो अभी अजय बन सकता है, बन गया है, उसको युद्ध में परास्त करना संभव नहीं है। इसलिए तुम लोग अभी सभी अंतर्ध्यान हो जाओ, सभी कला आपको पता, देवताओं को पता है, तो अंतर्ध्यान होकर स्वर्गों से चले जाओ कहीं दूसरे छुपकी रहो, समय आने पर अवश्य उसके समाधान होगा, लेकिन आप सभी अंतकरण में भगवान विष्णु को आराधना करो, उनको स्मरण करते रहो, समय आने पर इसकी स्थिति का अवश्य सुधार हो जाएगा। तो इसलिए आपने गुरु जी के आदेश लेकर देवता लोग ने स्वर्ग छोड़ के सब चले गए, बड़ी महाराज स्वर्ग को अधिकार कर लिए अनायास में, युद्ध भी करना नहीं पड़ा उनको। लेकिन जब स्वर्ग से देवता लोग सब चले गए, एक व्यक्ति दुखी हो गई, कौन? देवताओं की मां अदिति। उस समय कश्यप जी आश्रम में नहीं थे, कश्यप मुनि भी तपस्या में रत थे, वो तपस्या में समाधिस्त थे, और घर में अकेले बड़े आश्रम में अदिति अपने आश्रम में थी। इन कुछ समय के बाद जब तपस्या संपन्न करने के प्रांत वापस आए घर में अपने आश्रम में, अदिति के घर में जो पधारे कश्यप मुनि, देखे कि घर में आश्रम में सभी कई दिनों से इसके केयर नहीं लिया हुआ है, सब इधर उधर सामान पड़ा हुआ है घर, ऐसे लगता है कि कई दिनों से झाड़ू भी नहीं लगा घर में, और खाना की बात तो और चूल्हा लगाने की बात तो दूसरे हैं। बड़े खिन्न थी, कौन? अदिति, मलिन वस्त्र पहनी हुई थी, अवश्य अपने पति को देखकर उनको प्रणाम किया, स्वागत किया, लेकिन वो समझ गए कि कुछ ना कुछ अघटन घटा है, बाकी से ना किसी कारण से ये दुखी है। तो उन्होंने जिज्ञासा करने लगे कि क्या हो गया, कई प्रश्न पूछे, वो सब चर्चा यहां पर नहीं। तो उनके प्रश्न के जवाब देते हुए अदिति ने कहने लगे कि मेरी एक ही दुख के कारण है कि मेरे पुत्रों को मैं फिर वापस आना है, स्वर्ग में फिर वापस आना देखना चाहती हूं। यहां तक कि देवता लोग ने देवता जो राक्षस लोग ने देवताओं की घर तक भी छीन लिया, उसे जंगल में कहीं छुपकर राक्षसों के भय से भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे पुत्र फिर वापस आ जाए, कहां? स्वर्ग में, जिस स्वर्ग इनको भगवान विष्णु ने स्वयं प्रदान किया था, इंद्र को स्वर्ग के अधिपति बनाया था, आज अन्याय से ये राक्षस लोग उनसे छीन लिया है, इसलिए इसका कुछ प्रतिकार मैं चाहती हूं। तभी कश्यप मुनि ने इनको बहुत नीति सिखाई कि अरे वो सब सुख दुख में समभावपूर्ण होना चाहिए, ये भौतिक स्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए, मात्र स्पर्शस्तु कौन, जैसे भगवदगीता के उपदेश सुनाने लगे, लेकिन वो उनसे इसकी मति बिगड़ने मैंने सुधारने वाले नहीं, वो तो बड़े दुखी थे। तो सब देखे कि कश्यप मुनि इनको समझाने के कुछ फायदा नहीं है, आत्मतत्व के बारे में इनको शिक्षा देने में इसको कोई फायदा नहीं होगा। अंत में बहुत सोच साच के कश्यप मुनि कहे कि ठीक है, इसकी प्रतिकार तो केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, और मैं आपको संक्षेप में एक व्रत बता रहा हूं, जिस व्रत की आप धारण करोगे तो निश्चित रूप में भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहे कि इस व्रत मुझे ब्रह्मा जी ने सिखाए थे, व्रत की जो विधि को ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, जब मुझे सृष्टि करने के आदेश ब्रह्मा जी ने दिए, और मैंने पूछा इस सृष्टि कैसे किया जाएगा, तो उन्होंने पहले मुझे ये मंत्र सिखाए थे, व्रत के बारे में बताया था। उस व्रत के नाम है पयो व्रत, पयो का अर्थ दूध। इस व्रत को केवल दूध पीकर ही धारण किया जाता है, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद तिथि से लेकर त्रयोदशी तक है, जो ये 12 दिन का व्रत धारण करता है प्रतिपद से लेकर द्वादशी तक, त्रयोदशी का दिन निश्चित रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर उसके सर्व इच्छा पूर्ण कर देते हैं। कौन कहा इस बात को? कश्यप मुनि ने कहे। तब अपने पति के वचन में पूर्ण विश्वास रखने वाली अदिति ने तो कहे कि आप कृपा करके मुझे बताइए व्रत की विधियां कैसे हैं, कैसे व्रत की प्रारंभ किया जाए, कैसे क्या है। तो उन्होंने बताया कि अमावस्या व्रतिपद से व्रत धारण करना है, तो अमावस्या का दिन आपको कहीं ढूंढना चाहिए, कहीं यदि सुअर का मुख से मिट्टी खुदाई किया हुआ, जो मिट्टी सुअर ऐसा अपने मुख से दांत की सहारा से मुख से सहारा से खुदाई किया मिट्टी को, वो पवित्र माना जाता है, उस मिट्टी को शरीर में लगाकर किस पवित्र बहती हुई नदी की जल में स्नान कर लेने का, पवित्र माने अमावस्या के दिन पवित्र बनाना को शरीर को, और भगवान विष्णु की अर्च विग्रह को शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण की मूर्ति को स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना ब्राह्मण की सहायता से ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करना, प्रत्येक दिन इनको दूध से पहले स्नान कराना, स्नान करा के जैसे अभिषेक के प्रांत इनको कुछ खीर बनाकर भोग लगाना, सब वैसे प्रथा उन्होंने बताया, खीर लगाना भोग और खीर, और प्रत्येक दिन उस खीर को फिर भगवान को अर्पण करने के प्रांत भगवान सुंदर अलंकार वस्त्रों से पहना कि फिर उनके पास भोग लगाना, उसके बाद उसी प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दे देना, ब्राह्मण को यज्ञ अग्नि में कुछ डालना और ब्राह्मण को, दो ब्राह्मण को डेली भोजन कराना, हर दिन कम से कम दो ब्राह्मण को भोजन कराना, और कुछ प्रसाद ब्राह्मण को प्रसाद भोजन कराने के प्रांत, और स्वयं केवल दूध पान करके 12 दिन बिताना, जमीन के ऊपर सोना, फर्श के ऊपर ब्रह्मचर्य पालन करना, अहिंसा, किसी जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना, ईर्षा नहीं करना, ये समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त होकर। तभी कश्यप मुनि ने कहा कि यदि आप 12 दिन व्रत धारण कर लोगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अवश्य भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए अपने पति की जो वचन के पर विश्वास रखते हुए इस प्रकार प्रार्थना की, तो विश्वास रखते हुए बा उनके वचन में उन्होंने कठोरता के साथ इस व्रत को धारण करने में सक्षम हो गई है। कश्यप ने कभी कभी अपने पत्नी को ऐसे पहले भी एक बार उनको भी व्रत के लिए उपदेश दिए थे, किनको, इनके दूसरे वाइफ है दीति को, उनको कहे थे मुझसे आना व्रत रखने के लिए, उस व्रत वो नहीं रख पाई है क्योंकि उसकी राक्षस प्रकृति स्वभाव इसकी ऐसे ही है, वो व्रत नहीं रख पाए, तो वो खा के एक दिन मुख धोने भूल गए शाम के समय, इसलिए मुख आ करके सो गई थी, तो मुख में कौन प्रवेश कर गए, इंद्र ने मक्खी रूप में प्रवेश कर गए, उसके अंदर में सारा गर्भ को काट के 49 खंड कर दिए, 49 पवन मूर्ति। लेकिन दीति ने इस व्रत को धारण करने में सक्षम हो गई, और पूजा विधि जैसे ही कश्यप ने बताए थे ऐसे ही उन्होंने ठीक ठीक संपन्न करने के कारण भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, वो आश्चर्यचकित रह गई, कौन, अदिति ने। जब ब्रह्मा जी जब दीति के नहीं सॉरी अदिति के गर्भ में भी भगवान आ गए, तो अर्थात भगवान ने इनको प्रकट हुए, सबसे पहले इनके सामने प्रकट हो गए, प्रकट होकर उनको कहे कि देखो अभी, और तीन श्लोक बता गया जिसको अदिति ने गाकर भगवान के सामने प्रार्थना की, भगवान के अदिति के ऊपर प्रसन्न होकर कहे कि ठीक है, मैं आपके पुत्र बनने के लिए अवश्य अनुमोदन करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आपके पुत्र के रूप में आविर्भाव हूंगा, आपके पति अभी तपस्या से आए हुए संपूर्ण पवित्र हो चुके हैं, आप उनकी सेवा करते रहिए, और समय पर मैं आपकी गर्भ में अवश्य प्रवेश करूंगा। इसलिए भगवान के होकर जब अंतर्ध्यान हो गए, तभी आदित्य ने आकर कश्यप मुनि के पास में पहुंचकर उनकी बहुत सभी प्रकार की सेवा करने लगी, और समय देखकर कश्यप मुनि समझ गए कि उनके हृदय में अभी भगवान प्रवेश कर चुके हैं, भगवान विष्णु उनके हृदय में प्रवेश किए हैं। तभी उन्होंने समय पर अपने वीर्य अदिति के गर्भ में स्थापन कर दिए, और जब अदिति के गर्भ में भगवान आ गए, तो ब्रह्मा जी आदि देवता लोग ने आकर स्तुति करने लगे। प्रकृति में भगवान वामन देव इसके पहले भी एक बार इनके पुत्र बने थे, कौन, किस रूप में, पुष्णी गर्भ के रूप में, जैसे भगवान ने कृष्ण, और बाप में भी एक बार ये पुत्र बनेंगे इनकी, श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव, क्योंकि ये बाप को कंस की बंदीशाला में भगवान ने घोषित किया था, जब ये प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के सामने भगवान इसी रूप में, जिस प्रकार अभी माता अदिति और कश्यप के सामने प्रकट हुए स्वयं विष्णु के रूप में, उसी रूप में उन्होंने माता ने देवकी और वसुदेव के सामने भी प्रकट हुए थे, तभी उन्होंने कहे थे अपने मित्र पूर्व जन्म के इतिहास, कहते कि माता पिता आपके पुत्र के रूप में पहले बार मैं आविर्भाव नहीं हो रहा हूं, पहले भी दो बार हो चुका हूं, क्यों, आपने सत्य युग में सुतपा पुष्टि के रूप में आविर्भाव हुए थे, और ब्रह्मा जी के आदेश पालन जब था कि आपको सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, तभी अभी आपने घोर तपस्या की है, 10,000 साल तक केवल सूखे पत्ते और सूखे घास खाकर तपस्या की, मैं आपके तपस्या में प्रसन्न होकर जो आपके सामने प्रकट हुआ, तो आपके मन में कोई मोक्ष तक भी मांगने की कोई इच्छा नहीं हुआ, मुक्ति भी आप नहीं चाहे, आपके मन में इच्छा हुआ केवल मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने का। इसलिए उस समय मैंने स्वीकार किया था, हे माता पिता, मैं 3 बार आपके पुत्र बनकर आऊंगा। तो इसलिए पहले बार वही व्यक्ति, वही भगवान विष्णु पहले बार उनके पुत्र बनकर आए थे सुत पापुष्णी के रूप में, अब दूसरी बार उनके पुत्र बन रहे वामन देव के रूप में, और तीसरी बार फिर कृष्ण के रूप में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में फिर आएंगे। इसलिए वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन बार बार भिन्न रूप केवल चेंज कर लिया, उसमें पुष्णी के रूप में थे, अभी वामन के रूप में, फिर बाप में कृष्ण के रूप में आएंगे। तो भगवान ने जब गर्भ में आए, ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहने लगे, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप समस्त जीवन के हृदय में भीतर स्थित हैं, तीनों लोक आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन लोकों में से परे हैं। पहले आप पृष्णि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, मैं उन परम श्रष्टा को सादर नमस्कार करता हूं जिन्हें केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है, सारे आलोचना करना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी की स्तुति को श्रवण करने के प्रांत भगवान प्रसन्न हो गए, और तभी सुखदेव गोस्वामी ने कहे कि जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्य एवं पराक्रम का जसगान कर चुके, तो भगवान जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, अदिति की गर्भ से प्रकट हुए, उनके 4 हाथ, कितने हाथ था उनके, 4 हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़िया जैसे प्रतीत हो रही थी। भगवान का शरीर सांवले रंग का था और समस्त उन्मादों से मुक्त था, उनका कमल मुख मकराकृति जैसे कान से कुंडल, उनकी कुंडल मकर कुंडल को धारण किए हुए थे, अत्यंत सुंदर लग रहा था, और उनके बक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे, उनकी कमर में करधानी थी, छाती के आर पार जनेऊ पड़ा था, और उनके चरण कमल को पायल सुशोभित कर रही थी। उनके बक्षस्थल पर असाधारण सुंदर फूलों की माला सुशोभित थी, फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियां का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूटा पड़ा था। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए, तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जल सागर में तथा सबके हृदय में प्रसन्नता का व्याप्ति होने लगा। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखलाने के लगे तथा उच्च लोक बाह्य आकाश एवं पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता गाय ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। श्रावण द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि आदि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत दानी बन गए। हे राजा परीक्षित, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए, तो सूर्य मध्याकाश में था। किस समय प्रकट हुए? मध्याकाश में सूर्य थे, अर्थात दोपहर के समय। उस दिन श्रवणा नक्षत्र था और अभिजीत मुहूर्त था। जैसे कि प्रत्येक विद्वान की यह मत है, यह द्वादशी विजया द्वादशी कहलाती है। विशेष रूप में जिस द्वादशी में भगवान वामन देव प्रकट हुए, इसको विजया द्वादशी कहते कि। और इसी भगवान के प्राकट्य को देखकर आकाश में सब देवता लोग ने भिन्न भिन्न वाद्य बजाने लगे। शंख ढोल मृदंग प्रणव आदि अनेक वाद्यों की ध्वनि करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे, और असंख्य पुष्पवृष्टि होने लगा। देवताओं की इतने पुष्पवृष्टि की कि जो कश्यप मुनि के पूरा आश्रम फूल में ही ढक गए। असिध्य विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण जक्ष राक्षस सभी कुछ सभी बड़े आनंदित होकर नृत्य गीत करने लगे। और जब अदिति ने देखा
जो भगवान उनके अपने गर्भ से उत्पन्न हुए थे उन्होंने अभी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वह आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रसन्न हुई। बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य से पचीभूत हो गए। जय जय कहने लागे, कौन कश्यप बनी कहेगी, जय 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 धुनी करने लागे। लेकिन जब इसी प्रकार माता पिता प्रसन्न होकर जय जय कह रहे थे, उस समय भगवान किस रूप में थे? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु के रूप में खड़े थे। लेकिन फिर भी वो देखते देखते ही भगवान उस रूप को फिर बदल लिया। पहले देखे दर्शन दिए इनको शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए भगवान नारायण के रूप में, लेकिन माता पिता ने बड़े खुश होकर कश्यप मुनि जो जय जय कह रहे थे तो फिर वो अपने रूप को बदल लिए। किस रूप में बदल लिए? ब्राह्मण बामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। देखते देखते अपने वो चतुर्भुज रूप को अंतर्ध्यान करते हुए भगवान ने साधारण बावना बामन के रूप में ब्रह्मचारी रूप में प्रकट हो गए। इसको देखकर बड़े सभी प्रसन्न बने, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो एक ही पुरुष है। इसीलिए सुखदेव को स्वयं कहते कि वो कैसे ना नटो नाट्य धरो जथा, जैसे कोई है कोई नाटक में अभिनय करने वाला कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति होता है, नहीं कभी कभी भिन्न भिन्न रोल करने के लिए ड्रेस बदल लेता है, उसी प्रकार वही नारायण है। वो पहलवी पुत्र के रूप में आए थे, उनकी उस समय तो पृष्ण गर्भ के रूप में थे, अभी बामन के रूप में आए। पहले नारायण के रूप में प्रकट हो गए, तुरंत अपने वेश को चेंज कर लिए। और जयदेव को सामने इसलिए कही, कैसव धृता मत ने मीन शरीर कैसव धृता कच्छप रूप केशव अधीत सुकर रूप। भगवान बार बार वही व्यक्ति व्यक्ति है लेकिन रूप बदल लेते हैं, अलग अलग रूप धारण करके लीलाओं को प्रकट करते हैं। इसीलिए उनकी जन्म कर्म लीलाएं दिव्य है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखते कि जन्म कर्म चमे दिव्यं, भगवान की जन्म कर्म सब दिव्य होता है। और माता पिता देखते देखते ही वही भगवान नारायण जो कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पहले उनको दर्शन दिया, उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, दिव्य आयुध दिव्य माल्यांबर आदि धारण किए हुए थे दिव्य अलंकार के साथ, वो तुरंत ही अपने रूप बदल दिए और ब्रह्मचारी के रूप में छोटा सा ब्रह्मचारी वेश धारण करके बामन बटु के रूप में सामने प्रकट हो गए। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी बामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही परम प्रसन्न हुए। अतः प्रजापति कश्यप ने कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। जन्म संस्कार क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। वो बच्चा कोई जमीन में पड़ा होता तो उसके नाभि कटा जाता है, वो सब कुछ सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन भगवान तो पूरे खड़े हुए हैं ऑलरेडी है, इसीलिए डायरेक्ट उनकी उपवित संस्कार संपन्न हुआ। बामन देव यज्ञ उपवित संस्कार के समय सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का जप किया। पहले देखिए कि तो खड़ा हो चुके हैं बामन, तो इसलिए सभी ब्राह्मण लोग ने निर्णय किया कि इनकी जन्म संस्कार क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, इनको तुरंत ही जनेऊ पहनाना चाहिए, जनेऊ माने इनको उपवित संस्कार होना चाहिए। तो ब्राह्मण लोग ने इसलिए पहले इनको यज्ञ में उपवित संस्कार करने की निर्णय किया। जब सभी लोग ऐसे सोचे, सारे देवता लोग ने भी वहां प्रकट हो गए और सूर्यदेव ने स्वयं गायत्री जपने लागे। ओम भूर भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्ग देवस्य धीवहि तन्नो धियो प्रचोदयात्। वो कौन गया? स्वयं सूर्यदेव ने गायत्री मंत्र पढ़ने लगे, गायत्री जप करने लगे। इनको एक जनेऊ का जरूरत पड़ गया, गायत्री कैसे जप, जनेऊ चाहिए। जनेऊ कौन दिया? बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया। कश्यप मुनि ने एक मुंज की मेखला प्रदान की इनको। मुंज क्या है? मुंज किसको कहते हैं? है? किसको? नहीं नहीं डियर स्किन तो अलग, ऊपर में उत्तरी डालने के लिए उसको बाद में दिया जाएगा, पृथ्वी माता ने देंगी, माता पृथ्वी ने इनको प्रदान किया। बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया, कश्यप मुनि ने मुंज के मेखला कर मैंने बांधने के लिए इन कमर में दिए। माता पृथ्वी ने उन्हें मृगचर्म प्रदान किया। वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने इनको ब्रह्मचारी का दंडा, ब्रह्मचारी को एक दंडा भी धारण करना चाहिए, ब्रह्मचारी दंडा, तो इनको चंद्रदेव ने ब्रह्मदंड ब्रह्मचारी की दंडा प्रदान किया। माता अदिति ने उनको कौपिन दिया, कौपिन की जो कपड़ा ये कौन दिया? माता अदिति ने कौपिन धारण कराया भगवान को। और स्वर्गलोक के अधिनायक देवता ने बा इंद्र ने इनको एक छत्री दिया, ब्रह्मचारी को छत्री जाएगा भीख मांगने के लिए जाएगा तो खराब वर्षा में छत्री धारण करने के लिए छत्री प्रदान किए इंद्र ने। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, ब्रह्म जी पानी लेने के लिए पानी का जरूरत है, ब्रह्मचारी कमंडलू प्रदान किया। सप्त ऋषि ने इनको कुशग्रास दिया, यज्ञ आदि करेगा पहले कुशग्रास चाहिए, पवित्र है, ओम अपवित्र पवित्र कहते कि कुशग्रास से ही पानी लेकर छिड़का जाता है, समझा के छिड़केगा, तो कुशग्रास उन्होंने दिए सप्त ऋषि ने। माता सरस्वती ने इनको एक रुद्राक्ष की माला भेंट की, अभी पक्का ब्रह्मचारी वेश में सामने खड़े हो गए भगवान। तभी कुबेर ने भिक्षा मांगने के लिए पात्र दे दिया, इसको धन नहीं दिया, इतने पैसा है लेकिन वो पात्र दे दिया, मांग के लाओ और मेरे पास है। कुबेर ने इनको भिक्षा पात्र दे दिया। तभी भगवान ने सबसे पहले भिक्षा ग्रहण किया माता पार्वती से, अन्नपूर्णा के नाम से जाने जाती है, शंकर की पत्नी पार्वती ने इनको सबसे पहला भिक्षा दी, माता भगवती ने उन्हें पहली भीख दी। जो इस प्रकार सभी लोग स्वागत किए, सारे स्वर्ग के देवता लोग ने सभी लोग आकर भगवान वामन देव के स्वागत किए, तो भगवान ने अपने तेज प्रकट किया, ब्रह्म तेज प्रकट किया। जब भगवान ने अपने ब्रह्म तेज को प्रकट किए, जितने भी वहां पर खड़े थे सभी का तेज, सबके शरीर का चेहरा फीका पड़ गया। भगवान ने अपने ब्रह्म तेज को प्रकट किए, प्रकट करके पहले यज्ञ कुंड सजाया और इनमें यज्ञ करके पहले यज्ञ में घी आहुति दिए, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, पूजा की और यज्ञशाला में यज्ञ संपन्न किया। इसकी बात भगवान सुने कि कहां पर, भृगु कच्छ में नर्मदा के उत्तर तट पर यज्ञ चल रहा है। कौन यज्ञ कर रहा है? भगवान ने सॉरी भृगुवंशी ब्राह्मणों की अध्यक्षता से महाराज बड़ी अश्वमेध यज्ञ के संपूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने बड़ी महाराज को तो जिला दिया और उनके पराक्रम से उन्होंने तो स्वर्ग का जीत लिया, लेकिन स्वर्गों के इंद्र बनने के लिए कोई योग्यता होना चाहिए, इसको 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करना चाहिए। जो स्थिर भाव से इंद्र के पद को उपभोग करने के लिए व्यक्ति को योग्यता क्या, 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो इसीलिए शुक्राचार्य ने इनको लेकर बड़ी महाराज को लेकर भृगुवंशी ब्राह्मण की अध्यक्षता से अश्वमेध यज्ञ के संपन्न करने लगाए थे। कई अश्वमेध बीत गया था, प्राय ये लास्ट अश्वमेध यज्ञ था, 100 कंप्लीट होने वाला। ये 100 अश्वमेध यज्ञ जो कंप्लीट कर लेता तो फिर उसका पोस्ट परमानेंट हो जाता, कौन सा, इंद्र की पोस्ट। इंद्र बड़ा भयभीत रहता है, इसलिए पृथु महाराज भी यज्ञ संपन्न करते थे तो उस समय वो जाकर बार बार घोड़ा को चोरी कर लेता, 99 तो संपन्न कर लिए, लास्ट यज्ञ में घोड़ा चोरी करता था बार बार। तो सब फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सब बोले अरे आपको छोड़ दो, इसको बेचारा भयभीत हो रहा है, आपको क्या करना इंद्र की पोस्ट में। लेकिन इसे बड़ी महाराज को उसी पोस्ट के ऊपर स्थिति को स्थिर करने के लिए ही भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य की अध्यक्षता से यज्ञ संपन्न कर रहे थे। अभी वो संपन्न कर लेगा तो फिर इंद्र बन जाएगा, माने स्थिर हो जाएगा उसका पोस्ट, उसका अध्यक्षता। इसलिए भगवान वामन देव ने पहुंच गए यज्ञ के, तो सुने कि भृगु कच्छ ज्यादा दूर नहीं यहां से, क्या नाम उसका, अभी भ्रुच के नाम से प्रसिद्ध है, सिटी आता है नर्मदा के किनारे, और भृगु कच्छ था पहले उसके नाम, आस्ते आस्ते अभी उसके नाम क्या हो गया, भ्रुच है, अच्छा मुंगफलियां मिलते हैं। लेकिन वहीं पर नर्मदा के उत्तर तट पर, उत्तर दिशा उत्तर तट पर यज्ञ चल रहा था, ये सुनकर भगवान ने डायरेक्ट वहीं पहुंचे, सीधे जाकर भृगु कच्छ में पहुंचे, और विशेष के लिए विशेष रूप में उन्होंने अपने भक्त बलि महाराज के प्रति कृपा दिखाना चाहते थे, हैं? क्योंकि अभी युद्ध नहीं करके, युद्ध करके मारेंगे नहीं, प्रहलाद महाराज के को रक्षा करने के लिए जब वो नृसिंहदेव को नृसिंहदेव प्रकट होकर जब इनको वध कर दिए हिरण्यकशिप को, और प्रहलाद की स्तुति में प्रसन्न होकर भगवान ने इनको वचन दिए थे, तुम्हारा वंश में मैं आज से और किसी को वध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान बलि महाराज को वध नहीं कर सकते, वध कैसे करें, पहले अपने भक्तों को वचन दे चुके उनके वंश में और किसी को मारेंगे नहीं। बाद में भी इस प्रकार बाणासुर जो उत्पात करने लगा, भगवान केवल उसको हाथ काट दिए सारा, लेकिन हम जान से नहीं मारे हैं। तो इसलिए बलि महाराज को ऐसे तो राक्षस भी नहीं, तो यदि वो राक्षस घर में उनके भी जन्म हुआ था, लेकिन स्वभाव उनके भक्तों की था, और प्रहलाद महाराज के दायाद के रूप में उन्होंने उनकी मार्गानुसरण करते थे, किनकी, प्रहलाद महाराज की। और विष्णु भक्त थे, अन्य राक्षसों के तरफ वो इतने क्रूर बा नास्तिक नहीं थे। इसलिए भगवान ने भृगुकच्छ नाम से जब पहुंचे, भृगुकच्छ में जाकर भृगुवंशी ब्राह्मण जहां यज्ञ संपादन करते थे वहां पहुंचे, बामन देव के तेज को देखकर सारे पुरोहित के तेज बीन हो गया, सब ब्राह्मण लोग फीके पड़ गए चेहरा इनके, हैं? सब वो अपने अपने बात करने लगे, ये व्यक्ति कौन है, ये बावना के रूप में यहां पर प्रकट हो गया, लग रहा है कि स्वयं सूर्यदेव आ रहे हैं ना, आ गए ना क्या इधर दर्शन करने के लिए हमारा यज्ञ, या सनत कुमार आ गए या स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए, कौन है व्यक्ति, ऐसे ही अपने अपने ब्राह्मण अपने अपने बातचीत कर रहे थे। भगवान बामन देव ऐसे ही उसी स्थान पर जब पहुंच गए, इनकी उपस्थिति को देखकर, और भगवान बामन देव हाथ में दंड छाता और जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने मुंज की मेखला, जनेऊ, मृगचर्म और उत्तरीय वस्त्र तथा जटाचूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहितों, उनके शिष्यों का तेज, पुरोहितों तथा शिष्यों के समेत सभी के तेज घट गया, वे अपने अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, बलपूर्वक खड़े हो गए, अपने आप खड़े हो गए, इनको बोलने का कोई जरूरत खाली इनकी उपस्थिति देखकर खड़े हो गए, और प्रणाम करते हुए समुचित रूप से उनका स्वागत किया। इनकी बलि महाराज की, बलि महाराज ने जो जा रहे थे रास्ते में, बलि महाराज के घर से उनकी पुत्री कौन वो देख रही थी ऊपर से, क्या नाम है, रत्नावली, वो देख रही थी, उनकी इच्छा हो रहा था कि अरे ये कितना सुंदर बालक है, यदि मेरी पुत्र ऐसा ही होता, मेरा जो मेरा पुत्र होता, मैं कितने अपने स्तन आए उनको लेकर मेरी गोद में मेरी स्तनपान कराता हूं, कितनी सुंदर तेजस्वी बालक है, है? मेरा ही ऐसा ही पुत्र होता तो बहुत अच्छा होता, मैं अपने स्तनपान कराते हूं, है? वही बात आप बाप में बड़ी महाराज को जब सब छीन लेंगे बामन देव, तब फिर बोला कि इसको स्तन तो पान कराता हूं, लेकिन स्तन में जहर देकर इसको जान से मार डालती हूं। इसलिए उन्होंने बाप में कृष्ण की लीला में कौन बन के आए, पुतना बन के आई। लेकिन अभी भगवान बामन देव प्रकट हो गए यज्ञ स्थल में, उनको देखकर सभी लोग खड़े हो गए, यज्ञ में जितने भी पुरोहित सब शुक्राचार्य समेत जितने भी थे सारे अपने आप खड़े हो गए उनके तेज और प्रभाव को देखकर। शुक्राचार्य तो पहचान गए इनको के है, कौन है, कोई नहीं पहचाना था, एक व्यक्ति पहचान गया था, कौन, शुक्राचार्य, सब खड़े हो गए। और बलि महाराज ने बड़े तत्क्षणात भगवान के पास में आए प्रफुल्लित, बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए बहुत सुंदर आसन प्रदान किया, और तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज मेरा वंश जो मेरे पितरों आज धन्य धन्य हो गया, हमारा घर आज पवित्र हो गया, आप हमारे घर में पधारे हैं यज्ञ शाला में, ऐसे बहुत उनकी प्रशंसा करते हुए स्वयं सुहस्त में उनके चरण को धोया, कौन, बलि महाराज ने उनके चरण कमल को धोकर उनकी पूजा की। देवताओं में श्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का चिन्ह धारण करने वाले शिव जी, जिन विष्णु के अंगूठे से बहती हुई गंगा के जल को सिर में धारण करते हैं, उस रहस्य को बलि महाराज जानते थे, ज्ञान ये इनको ज्ञात था, इसलिए उन्होंने भी उसी भगवान विष्णु के चरण कमल को धोते हुए वो जल को अपने सिर में धारण किया, और दूसरे अपने परिवार वर्ग में सबके ऊपर छिड़का, सभी को भी पान करने के लिए दिए, और हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको सादर नमस्कार करता हूं, कृपया बताएं कि हम आपके लिए क्या करें, तभी मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं, आपके प्रसन्न कर सकता हूं, मुझे लगता है कि आप इस यज्ञ स्थल में पधार हैं कुछ मांगने के लिए, क्योंकि भिक्षु के वेश में आए, ब्रह्मचारी भिक्षु के वेश में आए हैं, लग रहा है कि आप कुछ मांगने आ रहे हो, मांगने आए हो, तो कुछ मांग लीजिए, जो चाहिए मेरे से ले जाए, लीजिए, मैं तो तीनों लोक के अधिपति हूं, है, इंद्र बड़ा अहंकार था किनको, बलि महाराज की, मेरे अधीन में स्वर्ग मर्त्य तीनों लोक सब कुछ मैं अधीश्वर हूं, सारे देवताओं को मैं भगाकर स्वयं स्वर्ग का भी अधिपति बन चुका हूं, इसलिए आपको क्या चाहिए, कोई जमीन भूमि चाहिए तो जमीन भी ले लीजिए, अतः आप जो भी चाहे मुझसे मांग लें, आप गाय, सोना, संचित घर, ने सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन, पेय, पत्नी रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ, जो भी चाहिए मुझे मांग लीजिए, मैं आपको आपके संपूर्ण कामना को पूर्ण करने में समर्थ हूं, ऐसा बड़ा है बोल रहे थे। तभी बड़ा थोड़ा मुस्कुराते हुए वामन देव ने अपने छोटे छोटे पैरों को दिखाए, कि हे राजा मुझे ज्यादा लोभ मुझे दिखाइए, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं, मेरे छोटे पैर देख रहे हैं इसमें से सिर्फ 3 पग जमीन चाहता हूं। ये मांगने के पहले उन्होंने पहले प्रशंसा की, आप इतनी महान हो, आपके वंश में कोई भी अभी तक वचन देकर इसको कभी टाला नहीं है, आपकी दयाद प्रहलाद की चरित्र तो सारा तीनों लोक में सभी कुछ सभी लोग गाते हैं, देवता लोग भी उनके जसगान करते हैं, और आपकी दो और जो पिता हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु थे वो भी बहुत महान थे, इतनी तेजस्वी थे कि हिरण्यक्ष तो एक गदा लेकर तीनों लोक में एकला भ्रमण करके विजय कर लिया था तीनों लोक को, उसके सामने कोई युद्ध करने के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने बराह रूप में उनको वध कर दिया। इसका बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने अकेले भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश कर गया, इतनी शक्तिशाली था, विष्णु को ढूंढने के लिए विष्णु उसे देखे कि अभी तो समय आया नहीं, उनको कुछ लीलाओं को प्रकट करना था, इसलिए सुखों व्यस्त है कि उसकी हृदय में प्रवेश कर गए, और वो चारों साइड भगवान विष्णु को ढूंढ रहा था, भगवान उसकी हृदय में बैठे हुए थे और वो चारों साइड भगवान को ढूंढ रहा था। बाद में डिक्लेयर करते कि गॉड इज डेड, भगवान विष्णु मर गया है, मैं सब जगह ढूंढ लिया, उनके धाम में भी देख लिया है, इतनी पराक्रमशाली आपकी वंश, और लेकिन ये सब होते हुए भी कभी भी ये लोग वचन नहीं तोड़े, जो किसको सत्य वचन दिया तो फिर तोड़े नहीं सत्य को, भाई फिर इसको तोड़े नहीं अपने वचन, और विशेष रूप में आपके पिताजी ही विरोचन, उसने भी देवताओं जानते हुए कि देवता लोग नहीं ब्राह्मण वेश में आकर उसकी परमायु को दान रूप में मांगा तो उन्होंने भी दे दिया। इसलिए मुझे ये विश्वास है कि आप जो सत्य कर लोगे अवश्य अपने वचन को कभी टालोगे नहीं, क्योंकि भगवान जानते कि आगे क्या होने वाला थोड़ा, तो इसलिए बड़े बहुत सुंदर इनको सलाह देकर छोटे छोटे 3 पैर दिखाया, देखो 3 पग जमीन केवल मुझे चाहिए है? जब ये बात को सुनकर शुक्राचार्य ने अपने श्री ओ बड़े महाराज ने बड़ा मुस्कुराए हंसे कहे कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बुद्धि थोड़ा कम है किसका, तुम्हें तो बड़े विद्वान की लागते हो, बड़े तेजस्वी हो, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं हुआ, थोड़ा बुद्धि कम है, तुम तो ये क्या मांग रहे हो, 3 पैर जमीन सिर्फ मांग रहे हो, तुम तो मेरे से एक दीप ले सकते हो, अर्थात पूरे भारतवर्ष में पूरे पृथ्वी विश्व को भी मांग सकते हो, ये सब दीप है आकाश रूपी, ये समुद्र में का अंदर में ये सब ग्रह जो नक्षत्र जो भास रहे ये सब एक एक दीप के समान इनको तोड़ना भी किया जाता है, क्योंकि एक प्लैनेट ले लो मुझसे और क्या मांग रहे 3 पग जमीन। वामन देव ने कहा कि नहीं इतना लोभ ही नहीं होना चाहिए, शास्त्र कहता कि संतोष रहना चाहिए, ब्रह्मचारी को जितनी कम अपने आवश्यकता का अनुसार इतना लेकर संतोष रहना चाहिए, इसे भगवान ने इनको बता रहे थे। तो शुक्राचार्य को रहा नहीं गया, उन्होंने क्रोधित होकर देखा बलि महाराज की तरफ, बोला कि तुम मूर्ख बलि, तुम क्या करने जा रहे हो, किसके साथ बातचीत कर रहे हो, किसको दान देने जा रहे हो, जानता नहीं ये कौन है, ये तुम्हारे शत्रु का इंद्र का पक्ष में आया तुम्हारे पास, उनकी पिता हमने इंद्र की माता जी अदिति का पुत्र बनकर इंद्र की भाई बनकर कश्यप अदिति को माता पिता बनाकर यहां पर आ गए तुम्हारा सर्वस्व लेने के लिए, सब कुछ तुमसे छीन कर दे देगा, किनको, देवताओं को, तुम पहचान नहीं ये कौन है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, क्षण में भगवान भी सुन रहे बैठकर, भगवान ही बैठे हुए उनके सामने ही शुक्राचार्य जी भाषण दे रहा, डांट रहा उसके शिष्य को, इसको कुछ मत देना, मत दो कुछ भी, मना कर दो, वचन वापस ले लो, सब ले लेगा, 3 पैर दिखा रहा है तुम्हारा, 2 पग में ही वो सब कुछ ले लेगा तुम्हारा, एक ही पैर में तो सब पृथ्वी को ले लेगा, इस भूलोक को ले लेगा, दूसरे पैर में तो स्वर्ग को जो अधिकार किया ले लेगा, स्वयं को विराट रूप को व्याप्त करके सब संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा बचेगा, तुम क्या दोगे इसको, क्योंकि भविष्य ज्ञानता थे कौन, शुक्राचार्य है, कभी नांग मसुना, कभी गीता में भगवान कहते कि इसलिए जितने भी बुद्धिमान मनुष्य उनमें से मैं कौन हूं, मसुना शुक्राचार्य कह के इसको मत दो। बोले महाराज बात को सुनकर थोड़ा गंभीर हो गए, बैठे कुछ बोलते नहीं थे, शुक्राचार्य बोलने लगे कि देखो तुम जो बोले जो कुछ बोला है पहले ओम उच्चारण नहीं किया, इसलिए श्रुति शास्त्र में कहा गया कि जब तक कोई ओम कोई वचन देता है लेकिन बात सबसे प्रारंभ से ओम उच्चारण न करके ऐसे ही बोलता है तो उस बात को सत्य नहीं माना जाता है, इसको टाला जा सकता है, इसके अलावा और कई संकट है प्राण संकट के समय में, अपने प्राण का जो प्राण जो जीवन जो संकट में है, वह किसी दूसरे को भलाई करने के लिए, दूसरे मित्रों को, दूसरे परिवार वर्गों को हित के लिए, व सारा जगत की अन्य प्राणियों के हित के लिए भी जो वचन पहले दिया गया है उसको टाल सकते हो। ऐसा ही धर्म संकट में कई परिस्थिति में सब बताया कि किस 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 स्तर पर आप वचन को टाल सकते हो। इसलिए अब ये आप दोषावह नहीं होगा, जो बला है तो उसको वापस कर लो, मैं तुम्हारा गुरु हूं और मैं तुमको ये सिखा रहा हूं, इसलिए गुरु वचन वचन को पालन करके भी तुम जो टाल दोगे तुमको दोष नहीं लगेगा। अभी मैं स्वयं कह रहा हूं, इसको टालो मत दो इसको कुछ। तो बड़े महाराज थोड़ा सा शांति में बैठे, फिर सोचे कि अरे क्या करूं, लेकिन बोले कि हे गुरु जी, आपने तो मुझे यही शिक्षा दिया था, ये सारे यज्ञ जो तपस्या आप मुझे संपन्न कराए, इतने सारे यज्ञ, कहते कि यज्ञ के अधिपति कौन है, भगवान विष्णु, भुक्तारायण यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम है सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानतमान शांति रुच्छति, ये मुझे सिखाया आप। और अभी कह रहे कि ये व्यक्ति बामना जो है, बामन रूप धारण करी वही विष्णु ही पधारा है, तो मैं कितनी भाग्यवान हूं कि मेरी यज्ञ स्थल में स्वयं यज्ञपति भगवान विष्णु ही पधारे हैं, और फिर भिखारी के रूप में भीख मांगने के लिए आए हैं, भिक्षा थाल लेकर मांग रहे हैं, और मैं इनको नौ दूं कैसे, आपने ही सिखाया था सब कुछ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अरे आप कह रहे कि वही विष्णु है और इसको वो मांग रहा है तो मत दो, मैं तो इसको स्वीकार नहीं करता हूं। विशेषतः एक ब्राह्मण बालक को जो वचन दिया हूं उसको टाल लेना ये ठीक नहीं रहेगा। माता धरती तो कहती है मैं सब कुछ सहन कर लेती हूं, लेकिन एक झूठा बोलने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति का भार को वहन नहीं करता हूं। पापी व्यक्ति की बोझा बहुत होता है, मैं सर झूठ कहने वाला का जो पाप होता है वो बहुत, माता पृथ्वी इसको सहन नहीं करती है, तो इसलिए मैं झूठ नहीं कह सकता हूं। मैं अपने वचन को कैसे ब्राह्मण बालक को वचन देकर इसको टाल दूंगा, ये संभव नहीं है। मैं सब कुछ, मैं भयभीत नहीं रहता हूं, नरक में जाने के लिए भयभीत नहीं हूं, लेकिन एक ब्राह्मण बालक की वचन देकर इसको टालना, झूठ कहना, ये मेरे से संभव नहीं है। इसलिए आप मुझे माफ कीजिए, आप मुझे माफ कीजिए। और आप कह रहे कि स्वयं विष्णु, यदि ये भगवान विष्णु होगा, भगवान विष्णु फिर आपने जस को भी, जस को कभी टालेगा नहीं, वो भी जसोस्सी है, हमेशा अपने भक्तों को रक्षा करता है, जो इनके आश्रय लेता है वो हमेशा उनकी रक्षा करता है, ये शास्त्र के वचन है। और यदि आप कह रहे कि स्वयं विष्णु, फिर ये जो कुछ करेगा प्राणी की हित होगा, ये कभी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकता, इसके स्वरूप ही मंगलमय है। इसलिए हे गुरुदेव मेरे, मुझे माफ कीजिए, आपके वचन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। आप कह रहे विष्णु और कहते कि दान फिर मत दो, ये कैसे संभव मेरे से। शुक्राचार्य ने देखे कि ये सुनने वाला नहीं है, कौन बोली तो कहे कि आज तो बड़े हैं, बहुत मूर्ख नंबर वन हो, लेकिन आपने को बहुत विद्वान की तरफ, गुरु के सामने भी तुम ऐसे तर्क करने लगा। गुरु के सामने तो शिष्य को बुद्धू होकर रहना चाहिए, गुरु जो बोलता स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन तुम गुरु के सामने भी ऐसा ही तर्क वितर्क करने लगा। शास्त्र का बड़ा पांडित्य तुमको अर्जन हो गया, अभी तुझे मैं अभिशाप देता हूं, तुम सर्वस्व खो दोगे। सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये सारे भगवान करा रहे थे, और शुक्राचार्य के अंदर में बैठकर उसको अभिशाप दिला दिए, किसको, बड़ी महाराज को, सर्वस्व खो दोगे। कहकर शुक्राचार्य शांत हो गए, बड़े महाराज कमंडल से जल ले रहे थे, लेकिन जल ऐसे डालते, पद्म पुराण में कहा जाता है कि जल डालने के समय भी जल गिरता नहीं था, क्योंकि भौतिकवादी गुरु जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई ये दे देगा सब कुछ, मैं भी कैसे अपना जीविका बचाऊंगा। वो छिद्र के अंदर मक्खी बनकर बैठ गए कमंडल के छिद्र में, पानी डालने पर पानी गिरता नहीं था, बड़ा परेशान होंगे बोली महाराज, ये पानी हाथ में गिरेगा तब तो संकल्प करके फिर दान देंगे, पानी गिरता ही नहीं। तो बामन देव की तरह थे, बामन देव तो सब जानते भगवान, तो इसलिए वो सप्तऋषि ने इनको दिया था कुशग्रास है, एक कुश का घास ने उठाए और वो छिद्र के अंदर खींच दिए, मक्खी होकर बैठा था तो उनकी एक आंख नष्ट हो गया है, क्योंकि जो सदगुरु होकर भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए शिष्य को मना करता है तो फिर वो गुरु नहीं रहा जाता, इसलिए एक आंख उसकी नष्ट होगी, आज भी शुक्राचार्य की एक आंख है। तो बाद में भगवान से फिर माफी मांग लेगा सब कुछ, शुक्राचार्य फिर हरि स्थान है, अपराध किया था इसलिए हरि भजन करके जप करके फिर पाप से मुक्त हो जाता है यज्ञ के अंत में। तभी जब शुक्राचार्य जैसे ही कहकर बंद हो गया, बड़ी मान ने अभी शुक्ला मक्खी जो भाग गए वहां से कमंडल किसी तरह से, तो वो संकल्प किए और भगवान को दान देने के लिए कहे मांगिए आप जो कुछ चाहिए आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगा। अब भगवान ने तो पहले से मांग चुके थे छोटा छोटा तीन पैर देखकर देखा कर, तो बलिमारण जब संकल्प कर लिया भगवान ने त्रिविक्रम रूप को प्रकट किया। पहले शुक्राचार्य ने बोल दिए थे त्रिविक्रम रूप प्रकट करेगा, विश्व रूप प्रकट करके सब कुछ है सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। पहला पैर में ही वो ले लिए विश्व पृथ्वी को ले लिए, दूसरे पैर को ऊपर को बढ़ाते हुए तो अंतरिक्ष पूरे आकाश में सब कुछ स्वर्ग को ले लिए, तीसरे पैर फिर नाभि से निकले क्योंकि बलिमार्ग के लिए तीसरे पैर कहां आपका दो पैर तो हर तीसरे पैर कहां लोगे, फिर कहते कि ना नाभि से निकाले दूसरे पैर नहीं तीसरे पैर निकाले, कह के बोली बो बड़ा दानी दिखाता है बहुत कुछ है, तीनों लोग के मालिक है सोजरा आपने को अभी कहां रखो तीसरा पैर, तुम दान नहीं दे पाने के कारण अभी नर्क में जाओगे नर्क में जाएगा इसको जब कहते लगे हैं। और गरुड़ पास में था उसके प्रति थोड़ा नजर दिए कौन भगवान ने, विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूं सब बहुत संक्षेप टाइम हो गया, तो इसलिए गरुड़ जी ने तुरंत आकर वो बांध लिए किनको बोले महाराज को वरुण पास में बांध लिए क्योंकि अभी दान नहीं देने में समर्थ नहीं है, तीन पैर जब पग भूमि ने देगा बोला था दो पैर दिए और तीसरा पैर है नहीं, इनको बांध लिया वरुण पास में और भगवान फटका रहे थे बोल बड़ा दानी दिखा रहा है कहां तीसरा पैर कहां दोगे। तो बड़े महाराज की पत्नी विंध्यावली ने आई और उन्होंने भी आकर भगवान की स्तुति करने लगी और उनको वो भी भयभीत हो गई थी पति को इस प्रकार बंधे हुए देखकर, लेकिन वो भी डांटने लगी बोले कि ये बहुत घमंड हो गया था इसको बहुत दान बहुत दानी सोच रहा था, सारे तीनों लोग तो भगवान का ही है ईशाभाष्य एकदम सर्वम सब भगवान का है और ये अपने को बड़ा दानी सोचकर दान करना चाहता था, आपने अच्छा किया इसको बांध दिया ऐसे दंडित किया बहुत अच्छा किया। विंध्यावली ने महान भक्तिमती थी तो इसलिए उन्होंने भी अपने पति को फटकराते रहे ऐसे दुर्गति देखकर बलि महाराज ने बंधे हुए थे रो रहे थे आंख से अश्रु गिर रहा था तभी भी केवल भगवान को स्मरण कर रहे थे समर्पित थे। तभी ब्रह्मा जी भी प्रकट हो जाते हैं और प्रह्लाद महाराज भी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहे कि प्रभु बहुत हो गया ये और दंड प्राप्त करने के योग्य नहीं है, सर्वस्व आपको अर्पण कर चुका है, आत्मनिवेदन कर दिया है सब कुछ दे दिया। तभी भी बलि महाराज ने प्रह्लाद महाराज ने आकर प्रकट हुए वो भी भगवान को स्तुति किए हैं। तभी भी बलि महाराज ने सोचे भयभीत थे कि मेरी वचन झूठा न हो, ब्राह्मण को वचन दिया वो कैसे झूठा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहे कि प्रभु मैं सर्वस्व अर्पण ये तो दे दिया हूं लेकिन अभी तक शरीर मेरा है, आप कृपा करके मेरे सिर पर तीसरे पैर रख लीजिए, शरीर को भी ले लीजिए हैं, ये शरीर भी आपने को आपके चरण में समर्पण कर दिया काय मनो वाक्य तीसरे पैर, इसलिए भगवान ने कहे कि बलि ठीक है तुमने जाओ नीचे लोक में चौथे लोक सुतों लोक में रहो, तुम उधर जाओ कि जाके रहोगे ये पहले से मैं प्लान कर चुका था, इसलिए विश्वकर्मा को लगाकर उस पुर को विशेष रूप में बनाया हूं कौन सा सुतों लोक को, वहीं जाकर जाकर तुम रहो और उसकी ऐश्वर्य से इंद्र की ऐश्वर्य स्वर्ग की ऐश्वर्य से कई गुण से अधिक है, वैकुंठ के समान ऐश्वर्य है, इसलिए तुमको वहीं भेज रहा हूं तुम वहीं रहो और तुमने मुझे सर्वस्व देकर मुझे भी खरीद लिया है और मैं भी तुम्हारा साथ में हमेशा वहीं पर रहूंगा, मैं तुमको मेरा सुदर्शन भी दे दिया, मेरा सुदर्शन हमेशा तुम्हारा रक्षा करेगा, मैं स्वयं ही द्वारपाल के रूप में तुम्हारे नगरी में खड़ा रहूंगा, हमेशा प्रत्येक दिन तुम नियमित मुझे दर्शन करने में समर्थ हो गए, तुमको यदि कोई राक्षस तुम्हारे प्रति विप्लव करेंगे ये मेरा सुदर्शन इनको सब समाप्त कर देगा, वहां पर कोई भी आकर तुमको परास्त नहीं कर सकते, देवता लोग भी वहां पर आक्रमण नहीं कर सकते, तो निर्भीक होकर उसी सुतल लोक की अधिपति बनकर रहो और मैं भी वहां निवास करूंगा तुम्हारे साथ साथ साथ, अगले जो मनंतर आएगा सावधनी मनंतर उस मनंतर तुमको फिर मैं इंद्र के पद पर बैठा दूंगा, यदि तुमको इंद्र बनने का इच्छा था तो मुझे बोलना चाहिए, तुम मेरी शुद्ध भक्त हो और तुम्हारे दायर प्रह्लाद भी इतने शुद्ध भक्ति किए हैं, मैं तुम्हें इंद्र पद देना कोई मेरे से बड़ा काम नहीं बड़े आसन में दे देता, लेकिन तुम मुझे मांगा नहीं और मैं किसी को इसको बैठा हूं किसी को बैठाया पद पर उसको जबरदस्त छीनकर उससे छीन लिया उसको भागा दिया ये ठीक नहीं हुआ, इसलिए अगले मनंतर में सावर्णी मनंतर में फिर मैं तुझे इंद्र के पद पर बैठा दूंगा, इसलिए अभी तुम उसी सुतलोक में जाकर रहो। प्रह्लाद महाराज को भी बामन देव ने आदेश देते कि आप भी जाकर उनके साथ में रहो, इसलिए अभी सुतलोक में दोनों रहते हैं बलि महाराज और प्रह्लाद महाराज। पुराण में ऐसे वर्णन आता है कि जब भी पद्म पुराण में कि जब बलि महाराज सुतोलोक में गए, भगवान वहीं दुर्वान मानकर खड़े हो गए, लक्ष्मी जी ने ढूंढने लगी अपने पति कहां है, नारायण कहां है, इतने दिनों से वैकुंठ आ नहीं रहे, कहां गए। तभी रास्ते में मार्ग में जाते हुए नारद जी देखे, नारद जी ने बड़े मजाक करने वाले तो कहे कि माता लक्ष्मी ने पूछी कि नारद जी मेरा प्रभु कहां है, नारायण कई दिनों से नहीं आ रहे, कहां गए। तो कहे कि तुम्हारा पति हो वो दोनवार बन गया उधर चौकीदारी कर रहा है। बोले अरे मेरा पति, मैं श्री देवी हूं, सौभाग्य की देवी हूं, मेरे पति कैसे चौकीदार बन सकता है। बोले मैं मजाक नहीं कर रहा हूं माताजी, आप साक्षात जाकर देख लीजिए, चौथा निम्न लोक में चौथा लोक में देखिए, चौकीदार बन के वहां खड़ा है बलि के पास। लक्ष्मी जी ने आते हैं, आकर देखते हैं कि सुतोल लोक में खड़े हैं भगवान। तो कहे कि यहां क्या कर रहे हो, चलो वैकुंठ चलो, यहां क्यों खड़े। भगवान कहे कि हे श्री जी, अभी मेरे पास शक्ति नहीं है, बलि ने मुझे सर्वस्व देकर खरीद लिया है, मेरे चरण मुझे सब कुछ अर्पण कर दिया, लेकिन मुझे परास्त कर दिया, मैं इसको क्या परास्त करूं, ये मुझे परास्त कर दिया, मुझे खरीद लिया है बलि महाराज, मुझे ये बलि मुझे आदेश नहीं देगा तो मैं यहां से एक पैर आगे नहीं जा सकता हूं, इसकी भक्ति से मैं बंधा हुआ हूं। आपको यदि मुझे लेके जाना है वैकुंठ, आप इसकी पूजन करो, किसका बलि के पूजन करो। इसलिए जब आप देखें वैष्णव कैलेंडर में, जिस दिन गिरिराज गोवर्धन की पूजा है उसके नीचे रखा लिखा रहता बलि दैत्यराज पूजन है, गिरिराज के धारण गिरिराज पूजा, उसके नीचे रहता बलि दैत्यराज पूजन। बलि दैत्यराज को कौन पूजा किया, स्वयं लक्ष्मी जी है, जगत की माता श्री देवी बा सौभाग्य देवी, वो जाकर बलि महाराज को रोते रोते पूजन करके कहे कि मेरे पति को वापस कर दो पति को दे दो मुझे, बलि बलि को प्रार्थना करते हैं। इसलिए यदि कोई भक्ति करता है, भगवान के शरण में जाता है, तो लक्ष्मी अपने आप उसके पास में आते हैं, उनको लक्ष्मी को स्वतंत्र ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मी आकर उसके पास में अपने आप आते हैं, जो चाहिए तो ले लो, मेरे प्रभु को मुझे दे दो। बलि महाराज आकर, बलि महाराज के पास में आकर लक्ष्मी जी उनके पूजन करते हुए रोते रोते कहे कि मेरे पति को दे दो वापस, तुमको जो चाहिए जितनी ऐश्वर्य चाहिए सब कुछ ले लो मेरे से, मैं सौभाग्य की देवी हूं, तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे सब कुछ सभी कल्याण होगा, वैकुंठ के समान ऐश्वर्य तुम्हारे पास में रहेगा, इससे भी अधिक जो कुछ चाहिए तुम मिलेगा, पति को वापस करो। ये भक्ति का महिमा है। इसलिए नवदा भक्ति में बलि महाराज आत्मनिवेदन में नाम आते हैं, श्रवणम कीर्तनम यानी विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन में बलि महाराज। यहां तक कि अपने गुरु के वचन को भी टाले, गुरु को इसी का और इसी को टाल कर ही महाजन बने, आदर्श सिखाए कि कब गुरु को त्याग जाता है, त्यागा जाता है, जब गुरु कहता कि भगवान विष्णु की भक्ति मत करो, जब गुरु कहता कि मैं ही भगवान हूं, स्वयं को भगवान घोषित करता, स्वयं का पूजा स्वीकार करता, भगवान ने भगवान को पूजन करना मना कर देता शिष्य को, उस समय शिष्य इनको त्यागना चाहिए। ये कह रहा है कि विष्णु को मत दो, वो कुछ नहीं, मेरे को सब मेरा बात सुनो, भगवान को दान मत दो, भगवान की पूजन मत करो, इसे शुक्राचार्य ने शिक्षा दिए। बलि महाराज ने त्यागा यज्ञ की यज्ञ बात में, बलि महाराज सुतोलोक में जाने के उपरांत शुक्राचार्य ने जब थे, भगवान ने इनको एकांत में देखकर डांटा, किनको, शुक्राचार्य जी को, ऐसा शिक्षा कभी भी और शिष्यों को नहीं देना। वो भी बड़ा रोने लगा, भयभीत होकर भगवान चरण माफी मांगने लगा, और फिर उन्होंने कहे कि भगवान ने कहे कि ठीक है बलि महाराज के यज्ञ को पूर्ण करो, संपन्न करके पूरा पूर्ण हुआ था पूर्णाहुति देकर यज्ञ को संपन्न करके, और फिर मेरी नाम भजन करके ही तुम इस पाप की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाओगे, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तो इस प्रकार बलि महाराज की ने प्रसंग जो ये वामन देव की कथा, ये आठ अध्याय में विस्तार में बहुत सुंदर भाव से भागवत के वर्णन है, आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं, आठम स्कंद के 15 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक वर्णन है। राजीव गोस्वामी का भी आविर्भाव तिथि है, जीव गोस्वामी जैसे आप जानते 6 गोस्वामी में 3 गोस्वामी वृंदा एक ही परिवार के थे, रूप सनातन और जीव गोस्वामी। रूप सनातन के छोटे भाई थे वल्लभ अनुपम, उन्हीं के पुत्र थे जीव गोस्वामी। जब गौरांग महाप्रभु पहले बार वृंदावन जाने के रास्ते बांग्ला गए, हम सब पश्चिम बंग में गए थे, वहां से रामकली में भी पधार थे, कन्हैया नटसरा से फिर वापस आए रामकली, क्योंकि इसकी उस असली इच्छा था कि स्वरूप सनातन को कृपा करने के। तो वहां पर ऐसे वर्णन आता है कि भक्ति रत्नाकर में कि जब ये रूप और सनातन आकर उस तमाल वृक्ष आज भी है जिस तमाल वृक्ष के नीचे रूप सनातन आकर और मिले थे किनको, गौरांग महाप्रभु को, राज देश को त्याग कर साधारण धोती कुर्ता पहन कर साधारण ग्रामवासी किस तरह आकर इनको मिले थे, उनके साथ में भक्तिरत्ना के प्रणाम के ने प्रमाण के आधार पर जीव को समीपित है। सी जीवादि संगपने प्रभु के देखिला, कहते कि प्रभु जो महाप्रभु देखे इनके संग, इनके संग में जी श्री जीव भी थे। समय जीव को समय छोटे थे, लगभग 7-8 साल ऐसे ही छोटे उम्र में थे, लेकिन बाद में तो रूप सनातन आ गए ब्रज में। अजीव ने जीव, इनके पिताजी की भी देहांत हो गया, किसके, अनुपम है? ये अनुपम बा बल्लभ इनके जो पिताजी थे उनकी देहांत हो गया। अजीव गोस्वामी बचपन से ही कृष्ण बलराम के विग्रह को पूजा करते थे। जब इनके पिताजी ताऊ सब घर त्याग दिए बड़े दुखी होकर, ये पहले राम आकला चंद्रदीप बा रामकली में रहते थे, वहीं पर उनका आविर्भाव हुआ था। और कोई कहते कि इनका आविर्भाव 1511 में, कोई कहते 1513 में, जो भी है टोटल ये लगभग 85 साल धरा पर रहे थे। 20 साल तक घर में रहे, 65 साल उन्होंने ब्रज में बिताया। इन्होंने जब भी सभी पिताजी ताऊ सभी के वियोग में बड़े दुखी रहते थे, लेकिन बचपन से ही उनके संस्कार था कृष्ण बलराम की पूजन करते थे। और एक दिन ऐसा ही रात्रि में शयन किए थे तो भगवान की इच्छा से ही उन्होंने स्वप्न में देखे कि कृष्ण बलराम ही गौर निताय के रूप में प्रकट हो रहे, देख रहे कृष्ण बलराम फिर गौर निताय। सारे गौरांग महाप्रभु की विशेष कृपा के आधार पर संपूर्ण संकीर्तन लीलाओं को स्वप्न में दर्शन किए और गौरांग महाप्रभु इनको आलिंगन करके नित्यानंद के चरण में समर्पण कर दिए। तो मैं इनको समझ गए कि प्रकृति में जो ही कृष्ण बलराम बस वही कौन है, गौर नेता है, ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत हिले से ही बलराम हिले नेता है। तो मैं निर्णय किया कि मैं जाकर, तभी महाप्रभु तो अप्रकट हो चुके थे लेकिन नित्यानंद प्रभु शिवासंगन में थे, वहां पर संकीर्तन चलता था। तो उन्होंने कि शिवासंगन में पहुंचे और नित्यानंद प्रभु को दर्शन किया। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को लेकर सबसे पहला नवदीप मंडल परिक्रमा कराया। आज जो हम नवदीप मंडल परिक्रमा करते हैं ये सबसे फास्ट नवदीप मंडल परिक्रमा कौन कराया, किसको, स्वयं नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर परिक्रमा कराया भक्ति रत्नाकर में, वही विशेष वर्णन की गई है। और नवदीप महात्म्य से महात्मा भी भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं। जब इसके नवदीप मंडल को परिक्रमा कराकर जीव गोस्वामी को सारे महाप्रभु की लीला स्थलियों को दर्शन करा के फिर नित्यानंद प्रभु कहे कि अभी तुमको वृंदावन जाना है। प्रभु कहे शीघ्र ब्रजे करह प्रयाण, तुम्हार वंशे प्रभु दिया छेन से स्थान। महाप्रभु ने कहे कि हे जीवा अभी तुमको वृंदावन, शीघ्र ब्रजे, ब्रज में चले जाओ, वृंदावन में जाओ, क्योंकि वो वृंदावन आपके वंशों को महाप्रभु ने प्रदान कर दिया, किसको, रूप सनातन को दिया, और आप भी जाकर उन्हीं के साथ रहो। हैं तुम्हारा वंश से प्रभु दिया छे ना से स्थान, वो स्थान दिए हैं, इसलिए आप ब्रजवास करने के लिए योग्य हो। आप अभी यहीं से जाओ सीधे शिवासंगन से मायापुर से वृंदावन जाओ और जाकर उनके रूप सनातन के साथ में रहो। लेकिन रास्ते में जाते हुए शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए बनारस में भी उन्होंने थोड़ा दिन रुक गए। वहां पर मधुसूदन वाचस्पति से उन्होंने ग्रामर सीखा, संस्कृत ग्रामर के बहुत अध्ययन किए, बड़े पारंगम बने संस्कृत भाषा में। थोड़ा दिन रहकर फिर उन्होंने जाकर वृंदावन पहुंचे और वो विशेष रूप में रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में उन्हीं की चरणा और बिंदु को आश्रय करते हुए वहीं निवास किए। रूप गोस्वामी के साथ में राधा दामोदर मंदिर आज जहां पर है, रूप गोस्वामी भजन कुटीर समाधि है, वहीं जीव गोस्वामी की, जीव गोस्वामी भी उन्हीं के साथ में रहने लगे और उन्हीं से भी दीक्षा प्राप्त किए। इसलिए जीव गोस्वामी के दीक्षा गुरु कौन है, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी इनको दीक्षा देकर कृष्ण मंत्र में दीक्षा देकर इनको शिष्य रूप में स्वीकार किए। लेकिन जीव गोस्वामी की अगाध पांडित्य था। 6 गोस्वामियों में महाप्रभु ने प्रत्येक गोस्वामी के पास में एक एक गुण को विशेष रूप में प्रकट कराया। इन्होंने जिस प्रकार भक्ति, विशेष रूप में भक्ति के आचार्य रूप गोस्वामी है, संबंध ज्ञान के आचार्य विधि भक्ति की ये सिखाया, हरिभक्ति क्लास के माध्यम से सनातन गोस्वामी सिखाया है, और वैराग्य कैसे करना है रघुनाथ, महाप्रभु गणे रतिहो वैराग्य प्रधान जहां देखी प्रीतहन गौर भगवान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि गौरांग महाप्रभु की वैराग्य भक्त में से ये प्रधान है। कौन? रघुनाथ दास के माध्यम से डिटैचमेंट, कैसे संसार में वैराग्य संसार के प्रति रखना। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु ने प्रकट कराया कि कृष्ण सेवा, विग्रह सेवा और सालग्राम की सेवा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सालग्राम सेवा ही कृष्ण, उसे कृष्ण विग्रह प्रकट हुए। अर्चना कैसे भगवान की अर्चना करना है तो वो सब गोपाल भट्ट गोस्वामी से सीखना। राधा रमन प्रकट हुए सालग्राम से। भागवत को कैसे चर्चा करना, भागवत के आचार्य हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, उनके पास में दो कला महाप्रभु के आशीर्वाद से। भागवत को व्याख्या करना, वो एक एक श्लोक को लगभग 12 अलग अलग टोन में गाने में समर्थ थे। एक श्लोक को लगभग 12-13 टोन में गाते थे गाने में, और इसको एक एक श्लोक को शब्दार्थ साथ व्याख्या करने में उनके समान कोई तीनों जगत में नहीं था। किनके समान है? रघुनाथ भट्ट। और उनकी कुकिंग, वो जो उनकी कुकिंग करते थे वो बोले अमृत के समान होता था। ये दोनों महाप्रभु के आशीर्वाद से इनको प्राप्त हुआ था। उसी रघुनाथ भट्ट की व्याख्या सुनकर की भागवत के जयपुर के राजा है मानसिंह ने उनके शिष्य बन गए थे। उन्होंने गोविंद देव, उनकी कहने पर गोविंद देव मंदिर को निर्माण कराया था वृंदावन में। अजीब गोस्वामी के पास में महाप्रभु की विशेष कृपा था कि पांडित्य है, शास्त्र अर्थ करने में पांडित्य में उनके समान कोई नहीं था। कहते कि व्यासदेव जी ने जितने भी श्लोक रचना किए हैं लगभग 400,000 श्लोक, इतनी श्लोक कौन रचना किया? जीव गोस्वामी भी। इन्होंने सब संदर्भ लिखे हैं और गोपाल चंपू कितनी बहुत ग्रंथ उन्होंने रचना करके सब गए हैं। हरिनामामृत व्याकरण बहुत कुछ ग्रंथ उन्होंने सारे गोस्वामी में जितने भी ग्रंथ लिखे ये सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं। और विशेष पांडित्य में उनके साथ में कोई समकक्ष नहीं कर सकता है। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को पांडित्यता के माध्यम से प्रकट करना ग्रंथों के माध्यम से। और इसलिए जो रूप सनातन भी किताब लिखते थे इसको कौन एडिट करता था? जीव गोस्वामी एडिट करते थे। वो सब लिखते थे लेकिन एडिट करने वाले थे जीव गोस्वामी। रूप सनातन के ग्रंथ को भी ये एडिट करते थे। जीव गोस्वामी के साथ में जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य थे, उनके साथ रहते थे। जब जीव रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत ग्रंथ लिखते थे, भक्ति रसामृत सिंधु, तो उनके पास में रहते थे। राधा दामोदर मंदिर थोड़ा आगे जाओगे तो वहां पर एक राधा वृंदावन चंद्र मंदिर है, वो है किनका? वल्लभ भट्ट, बाद में वल्लभाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो उस समय वल्लभाचार्य वही रहते थे, वल्लभ भट्ट, वही राधा वृंदावन चंद्र मंदिर। उनको जमुना बालू में वो बाल गोपाल मूर्ति प्राप्त हुए थे, वहीं उस मंदिर में स्थापन है। तो बात्सल्य रस में रहते थे। तभी वो जो लिखते थे भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी, तो एक दिन वल्लभ भट्ट आए, कहे कि रूपक क्या लिख रहे हो? तो कहे कि मैं इस किताब लिख रहा हूं भक्ति रसामृत सिंधु। तो उन्होंने थोड़ा कुछ पढ़े, पढ़ के बोले कि इसमें कुछ गलती दिख रहा है, मैं इसको संशोधन कर देना चाहता हूं। वो बड़ा उसको मैं विस्तार से नहीं कर रहा, बहुत सुंदर प्रसंग है, संशोधन करना चाहता। मुख्य है कि बात्सल्य रस की भक्त थे, वो सोचते कि माता यशोदा की जो भक्ति है वो राधारण की भक्ति से भी श्रेष्ठ है। जब उन्होंने थोड़ा उसको सोचते थे कि बात्सल्य रस को मैंने माधुर्य रस को श्रेष्ठ लिख रहा है थोड़ा, लेकिन जीव गोस्वामी के सहन नहीं हो। जीव गोस्वामी खड़े होकर पंखा करते थे, पंखा झूलते थे रूप गोस्वामी की ओर लिखते। तो उन्होंने सुने कि क्या करें, मेरा गुरुदेव की रचना में भी त्रुटि दिखा रहा है। तो उन्होंने पानी लाने जा रहा हूं थोड़ा जमुना की बहाना करके, जो प्रभु वो स्नान करने जा रहे थे, कौन वल्लभ भट्ट ये भी पीछे पीछे चले। आज जमुना के किनारे आए और बोले अच्छा सीताज जी, आप मेरा गुरुदेव जो पुस्तक लिख रहे थे आप कहां त्रुटि देखे, आप बोल रहे थे कुछ त्रुटि देखे, कहां पर खिलाफ है देखे आप? तो उन्होंने बताया। तो लेकिन जीव गोस्वामी इनको सारे शास्त्र से ऐसे ही युक्ति देकर, इतनी संस्कृत श्लोक सुनाकर इनको सारे उनके दांत खट्टा कर दिए। उनको जितनी युक्ति की सारे युक्ति को एक एक करके प्रमाण खंडन कर दिए, कौन निरुत्तर कर दिए, इनको निर्वाक कर दिए। किनको? वल्लभ भट्ट को। वल्लभ भट्ट बोला ऐसे भी पांडित्य है संसार में, ऐसे भी कोई पंडित होता है? सिर्फ 14 साल उम्र उस समय जीव गोस्वामी 14-15 साल की उम्र था, नहीं सर कम से कम 20 साल वैसे ही नए जौवन अवस्था में इतनी पांडित्य निरुत्तर हो गए। जीव गोस्वामी आ गए वापस, लेकिन इसके पीछे पीछे वो स्नान करके आ गए, कौन वल्लभ भट्ट। आके कहे कि ये आपके पास में जो लड़का है आपको पंखा झूलता था उसके नाम क्या है? तो कहे कि उसका नाम जीव है, है? रूप गोस्वामी ने कहे कि जीव नाम शिष्य मरो भ्राता रतन है, उसके नाम मेरा ही शिष्य है, उसके नाम जीव, मेरे भाई का भी लड़का है।
तो कहे कि ऐसा ही जीव संसार में वो साधारण जीव नहीं है, है? किसी अद्भुत जीव है। आज तक मुझे शास्त्रार्थ में कोई परास्त नहीं किया था, लेकिन ये तो खड़े खड़े ही मुझे शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। कौन? ये इतनी कम उम्र में, और वो मैं उसके पास में निरुत्तर हो गया। धन्य है उसके क्या पांडित्य और उसकी मेधा शक्ति का। ऐसे ही वो प्रशंसा कर चले गए, लेकिन रूप गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की अच्छा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहे कि सिरूप डाकिया कहे सिजीवेर प्रति अकाले वैराग्य वेश धरिल मूढ़मती क्रोधेर उपर क्रोध हईल तोमार ते कारण तोर मुख ना देखी बार। भक्त रत्नाकर कहे कि तुझे डाकी के रूप गोस्वामी बोला है, जीव गोस्वामी कहे कि तू क्या किया तू वैष्णव अर्थात तुणाद भी सुनी चेना तोरो रूपी सही सुना। मैंने इसको इतनी रेस्पेक्ट देता हूं बरोड़ा बट इतनी वयोवृद्ध है हमसे, तुमने देखा नहीं और तुमने जाकर उनसे जुक्ति क्या क्यों है? अकाल वैराग्य, अकाल जो तुम वैराग्य वैसे वैराग्य वेश धारण कर लिया, लेकिन अभी तक क्रोध भी तुम्हारा दमन नहीं हुआ, क्रोध को भी तुम काम क्रोध दमन नहीं किया, और क्रोध के ऊपर तुमको क्रोध आने लगा इतने, और जाकर इतने वयोवृद्ध व्यक्ति के साथ जुक्ति तर्क किया, इसलिए मैं तुझे तेरा मुख नहीं देखना चाहता हूं, चले जाओ मेरे सामने से, आज से तुमको तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता हूं। क्यों जाकर तर्क किया उनसे? जो मैं निरुत्तर रहा, मैं क्या उनको उत्तर नहीं दे सकता था, लेकिन मैं जो शांत रहा, तुम क्यों जाकर जुक्ति किया उनके तर्क किया, तो इसलिए तुम यहां से चले जाओ है? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जीव गोस्वामी बड़े दुखी होकर चले गए, और जाकर जब नंद एकांत में जाकर नंदघाट में परिक्रमा, जो ब्रज परिक्रमा जाओगे नंदघाट आता तो वहां पर रहे, कहते कि वहां पर एक कुंभीर का गुम्फा था, बड़े ऐसे ही बहुत बड़ा था, वहीं रहते थे जमुना के, वहीं जल स्नान करके जमुना की मिट्टी खाते, कभी कभी कोई दूध साधु देखकर दूध दे जाता था तो पी लेते थे, नहीं तो जमुना के पानी पी लेते, थोड़ा मिट्टी जमुना मिट्टी और जमुना पानी पी के रहते थे बड़े। और उसी समय कहते कि शॉर्ट बैठकर शॉर्ट संदर्भ लिखते थे, उसी समय में जीव गोस्वामी बैठकर शॉर्ट संदर्भ की रचना की वहीं से बैठ गए। तो सनातन गोस्वामी भीख मांगते मांगते एक दिन वहां पहुंचे उसी गांव में, नंदगांव में, नंदश्री नंदघाट उसी आसपास के गांव में, तो एक ही भीख एक बुढ़िया के घर में, ब्रजवासी घर में जाकर थोड़ा आवाज की राधे राधे, माने माधुकरी करने जाते थे, सात घर में जितनी माधुकरी मिलता था उसी से पूरा दिन, आठ घर में नहीं जाते थे, गोस्वामी लोग ने माधुकरी करने का जो नियम था सात घर में जाते थे, जितने मिलेगा उसी में दिन, यदि कोई नहीं दिया फिर भी वो भूखे रहेंगे, लेकिन और आठ घर में नहीं जाते थे। तो इसलिए सनातन गोस्वामी गए और आवाज किए, तो बुढ़िया ने कहा कि बाबा थोड़ा वेट करो, मैं अभी लिप रहा हूं घर, थोड़ा लिप कर फिर हाथ धो के आपको भिक्षा देता हूं। फिर ये खड़े रहे दस मिनट चला गया, तुमने फिर दोबारा राधे राधे कहने लगे। तुमने कहे कि बाबा कौन सा घोड़ा चढ़कर आ गया इधर, घोड़ा में चढ़ के आ गया इधर, हमारा बाबा तो इधर रहता है जमुना किनारे, किसी को कुछ मांगता भी नहीं है, जो अपने लेकर कुछ देता है तो खाता, नहीं तो जमुना पानी पी लेता, जमुना मिट्टी खा के पानी पी के रह जाता, और ये बापा बाबा कौन सा ये सब घोड़ा चढ़ के आ गया कि राधे राधे बार बार कर रहा है। तो सनातन गोस्वामी कह के आए, ये सब बाबा कौन है? तो बुढ़िया किसने तो भीख आया भीख लेकर, लेकिन उसे पूछे कि तुम जो बाबा के नाम लिया है कहां रहता है वो? नहीं जमुना किनारे रहता है, देखो जाकर, देख लो जाकर है नंदघाट में देख लो। सनातन गोस्वामी आते हैं, आकर पहुंचे, देखे कि कौन था वो, धोनी की भातीजा जीव, देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन जीव गोस्वामी पर अस्थि कंकाल सारा हो गए थे, हैं पूरे शरीर में केवल हड्डी था, अस्थि और हड्डी, कई दिनों से खाना पीना कुछ नहीं, केवल कभी कोई दूध देता तो पीते थे, नहीं तो जमुना जल मिट्टी खा के रहते थे। बड़े दुखी होकर सनातन इनको साथ में लेकर गए थे रूप गोस्वामी के पास में, बताया सब कुछ, जीव गोस्वामी बताया कि गुरु जी ने मुझे त्याग दिया है, रूप गोस्वामी मुझे त्याग दिए हैं, और कोई आश्रय नहीं, मैं यहां पर रहा हूं। सनातन इनको साथ में लेकर गए, रूप गोस्वामी से मैंने बाह्य रूप से त्याग दिए थे, लेकिन अंदर में तो करुणा था, सोचते थे कहां गया रूप में वो बेचारा, कहां चला गया, कहां ढूंढू इसको, लेकिन वो जब लेकर आए सनातन इनको पीछे छुपा कर कहे कि रूप तुम्हारा भक्ति रसामत सिंधु रचना सब कंप्लीट हो गया कि नहीं? तुम्हें कहे कि कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन वो जीव कहां से चला गया, वो उससे रहता तो उसकी सहायता मिलता तो मैं अभी तक कंप्लीट कर देता, लिखा हो, लेकिन एडिट करने के लिए कोई नहीं है इधर, वो सब एडिट करता था है? और अभी जीवो होता तो कंप्लीट हो जाता, बेचारा मैं थोड़ा सा कुछ बोल दिया छोड़ के कहीं चला गया। तभी सनातन गोस्वामी तुरंत जीवो को लाकर उनके सामने दिए और उनको डांटे, किनको? रूप गोस्वामी को,
कि ऐसा कभी और न करना है। क्यों इनको त्याग, बिना कारण से ऐसे क्रोधित होकर त्याग दिया, तुम तो खुद भी क्रोध त्याग नहीं सका, इनको क्रोध का इनको बोल रहे थे तुम क्रोधित हो गए हो है। जीव ने जो किया सही किया, क्योंकि वह अपने गुरु की निंदा कैसे सहन कर सकता, आप उसके स्पिरिचुअल मास्टर हो, आपको गुरु के वो आकर आपके गुरु से गुरु की समालोचना कर रहा है व्यक्ति, वो कैसे, वो जो किया है सही किया। लेकिन आप भी जो किया सही है, क्योंकि भक्तों को सिखाया इनको कि वैष्णवों को तुनापी सुनिचे ना तरो रूपी सही सुना होना जरूरी है, नम्र दैन्य होना चाहिए। लेकिन दैन्यता तो सबके प्रति होता है, लेकिन आप किसी वैष्णव के सामने जब भी गुरु की अवमानना हो रहा है, कृष्ण की अवमानना, कोई कृष्ण की निंदा कर रहा है, गुरु की निंदा कर, तब उसको सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वयं का निंदा को सहन करना चाहिए। तो इस प्रकार फिर जीव गोस्वामी और उनकी संग्रह उनके पास में आ गए, किनके पास, रूप गोस्वामी के पास में आकर रहने लगे। कई घटना है, जीव गोस्वामी लाए थे, दिग्विजय पंडित आया था बहुत आसान से रूप का, वो तो बोलता था साइन करो सब, पूरा रूप सनातनों का है कि देखो मेरे से शास्त्र युक्ति करना है तो करो, नहीं तो साइन करोगे परास्त हो गए। रूप सनातन देखिए कितने गम उद्धत व्यक्ति, उसके साथ क्या शास्त्र युक्ति करेंगे, दैन्यता है नहीं ये कौन सा पंडित है, लेकिन कहे कि ठीक है हम लोग परास्त हो गए, कहे कि साइन कर दिए, कौन रूप गोस्वामी साइन कर दिए, सनातन गोस्वामी साइन कर दिए, दोनों साइन लेकर आके दिखाया किनको, देखिए तुम्हारा दोनों ताउल साइन कर दिए, रूप सनातन मेरे से परास्त हो चुके शास्त्र युक्ति में, तुम मेरे साथ शास्त्र युक्ति करना चाहते हो तो आओ, नहीं तो ये तो रूप गोस्वामी तो सहन नहीं, जीव गोस्वामी समाज की स्थिति क्या है, तो बोले कि सहन नहीं कर पाए, बोले क्या है, तुम रूप और सनातन को परास्त करने वाले हो, धूर्त तुम, मूर्ख हो तुम, कुछ भी नहीं जानते हो, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम उनके साथ शास्त्र युक्ति किया, मैं तो उनके से उनसे कितनी गुण से न्यून अत्यंत कनिष्ठ भक्त हूं, तो मेरे साथ युक्ति करके देखो, और कुछ ही क्षण में 2-4 मिनट में ही उनका सारे शास्त्र युक्ति समाप्त हो गया, किसका है, दिग्विजय पंडित को परास्त कर दिए, कौन, जीव गोस्वामी। तो इसलिए जीव गोस्वामी की अगाध पांडित्य था, 6 गोस्वामी उनकी विशेष रूप में महाप्रभु की कृपा के कारण पांडित्य में उनके समान कोई नहीं है। गौड़िया वैष्णव दर्शन को उन्होंने विशेष रूप में प्रतिष्ठित किया, षट संदर्भ को माध्यम से, बड़देव विद्याभूषण बहुत बड़े पंडित थे, माधव संप्रदाय के सन्यासी थे, लेकिन जब उन्होंने ये षट संदर्भ को पढ़ा जीव गोस्वामी के, तब समझ गए कि ये गौड़ीय वैष्णव जो दर्शन है ये अन्य तीनों वैष्णव संप्रदाय से ही श्रेष्ठ है, इसलिए उन्होंने माध्यम संप्रदाय को त्याग कर फिर आ गए, किसमें, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आ गए। इसमें आकर फिर वो श्यामानंद प्रभु के, बारासिकानंद प्रभु के शिष्य के शिष्य है, राधा दामोदर से दीक्षा लेकर फिर गौड़ी संप्रदाय में आए। इस प्रकार जीव गोस्वामी के पास में विशेष रूप में पांडित्य के लिए प्रसिद्ध है, और इनके जो राधा दामोदर विग्रह उनको कौन बना के, भक्ति रत्नाकर में कहा गया कि स्वप्नादेशे श्री रूप श्री राधा दामोदरे सोहस्ते निर्माण करी दिला श्री जीवरे, भगवान के स्वप्नादेश को प्राप्त करके ही रूप गोस्वामी ने स्वयं सोहस्त में उस विग्रह को निर्माण किया, राधा दामोदर विग्रह, और इनको दिए, किसको, जीव गोस्वामी को सेवा पूजा के लिए दे दिए थे। मूल रूप में राधा दामोदर विग्रह जयपुर में है, ओरिजिनल विग्रह, और अभी लेकिन वृंदावन में जो रहते हैं ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल विग्रह जो भी है, तो वहां पर जो रहते प्रकृति में कहा जाता है कि वो राधा दामोदर जो जयपुर में है वो ओरिजिनल मूल विग्रह है, और राधा दामोदर मंदिर आज जो देख रहे हैं उसको जीव गोस्वामी ने प्रतिष्ठित किया, उनमें सारे विग्रह सुबह अन्य गोस्वामी सुबह ध्यान होने के प्रांत, आज उस मंदिर में जो विग्रह देख रहे हैं आधारा वृंदावन चंद्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विग्रह, राधा दामोदर ललिता ये जीव गोस्वामी के विग्रह, और राधा माधव राधा चैल चिकन, और जो भूगर्भ गोस्वामी के विग्रह राधा चैल चिकन राधा माधव जयदेव गोस्वामी के सारे विग्रहों को इकट्ठी करके उन्होंने वहीं सेवा पूजा करते थे, और ये संपूर्ण विश्व वैष्णव सभा के ये अध्यक्ष थे, कौन, जयदेव गोस्वामी, जब तक वो जीवित रहे तो अध्यक्ष रहे संपूर्ण वैष्णव समाज के, नवद्वीप तथा माया तथा वृंदावन में जितने भी वैष्णव थे उन्हीं को ही अध्यक्ष के रूप में रूप सनातन अंतर्ध्यान होने के बाद वही अधिकार इनको प्राप्त हुआ था, किनको, जीव गोस्वामी के। संक्षेप में उनके बारे में बोलते हैं, नहीं तो इनके बारे में पूरा डिटेल बोलना तो पूरा एक क्लास होगा, क्लास से समय तो यहीं पर रहते, क्योंकि समय बहुत हो गया। श्रील जीव गोस्वामी आविर्भाव महा महोत्सव की, श्रील वामन देव आविर्भाव महा महोत्सव की। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि।